नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। महाराष्ट्र सरकार राज्य में महिलाओं की अगुवाई वाले गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड शुरू करेगी। राज्य में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की प्रधान सचिव मनीषा वर्मा ने यहाँ एक टाइकॉन कार्यक्रम में कहा कि शुरुआती चरण के स्टार्टअप के लिए महाराष्ट्र नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास फंड का आकार 200 करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा कि इस फंड का इस्तेमाल महिलाओं की अगुवाई वाले गहन प्रौद्योगिकी पर आधारित और सामाजिक रूप से प्रासंगिक स्टार्टअप के लिए होगा। वर्मा ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए एक सीड फंड शुरू करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन उन्होंने इसका ब्यौरा साझा नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों द्वारा खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने और बाजारों के अस्थिर होने का जोखिम है। IMF ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर घोषित प्रतिबंध में ढील देने और कुछ माल को भेजने की अनुमति देने के भारत सरकार के हालिया फैसले का भी स्वागत किया। IMF के प्रवक्ता गेरी राइस ने बृहस्पतिवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम खाद्य वस्तुओं, ईंधन और उर्वरकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने जैसे कदमों से बहुत चिंतित हैं, जो वैश्विक स्तर पर मूल्य वृद्धि तथा बाजार में अस्थिरता का कारण बन सकते हैं, इसलिए ये मुद्दा भारत से कहीं आगे है। भारत से जुड़े एक सवाल पर राइस ने कहा, हमारी निगरानी से संकेत मिलता है कि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद से लगभग 30 देशों ने खाद्यान्न और ईंधन सहित अन्य जरूरी सामान के निर्यात में कटौती की है, इसीलिए हम इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ने इस मुद्दे पर काफी मुखर रही। प्रथम उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने भी कल दोबारा ये मुद्दा उठाया था। वैश्विक बाजारों में निवेशकों की धारणा कमजोर पड़ने के बीच IT, बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में कमजोरी के चलते शुक्रवार को शुरुआती कारोबार के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में लगभग 600 अंक की गिरावट आई। कारोबारियों ने कहा कि रुपए के कमजोर होने से भी घरेलू शेयर बाजारों पर असर पड़ा। इस दौरान 30 शेयरों वाला सूचकांक 597.2 अंक या 1.08% की गिरावट के साथ 54,723.08 पर कारोबार कर रहा था। इसी तरह निफ्टी 176.30 अंक या 1.07% की गिरावट के साथ 16,301.80 पर आ गया। सेंसेक्स में सबसे अधिक 3.38% की गिरावट विप्रो में हुई। इसके अलावा टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इंफोसिस, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, HDFC के दोनों शेयर और TCS भी लाल निशान में थे। दूसरी ओर पावर ग्रिड, NTPC और टाइटन में बढ़त थी। पिछले सत्र में सेंसेक्स 427.79 अंक या 0.78% की तेजी के साथ 55,320.28 पर बंद हुआ। इसी तरह व्यापक NSE निफ्टी 121.85 अंक या 0.74% बढ़कर 16,478.10 पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटकर 77.82 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। अन्य एशियाई बाजारों में टोक्यो, हांगकांग और सोल में गिरावट थी, जबकि शंघाई मुनाफे में कारोबार कर रहा था। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.65% गिरकर $122.27 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बृहस्पतिवार को शुद्ध रूप से 1,512.64 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। श्रीलंकाई संसद में विद्युत संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष और कुछ ट्रेड यूनियनों की ओर से अडानी ग्रुप का विरोध देखने को मिला। विपक्ष का आरोप है कि अडानी ग्रुप के सहयोग से उत्तरी तट पर 500 मेगावाट का पवन बिजली संयंत्र लगाने के लिए सरकार से सरकार के बीच करार 1989 के कानून में संशोधन की अहम वजह है। विपक्ष की ओर से विरोध के बावजूद भी सरकार ने श्रीलंका बिजली अधिनियम में संशोधनों को पारित कर दिया। 225 सांसदों वाली श्रीलंकाई संसद में 120 वोट इस संशोधन के पक्ष में पड़े, जबकि 36 वोट इसके विपक्ष में डाले गए और 13 सांसदों ने इस प्रस्ताव को वोट नहीं दिया। वहीं इस संशोधन का सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड CEB से जुड़ी ट्रेड यूनियनों की ओर से विरोध देखने को मिल रहा है। सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कर्मचारियों की ओर से एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि अगर ये संशोधन कानून बनता है तो वे इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। सीईबी के इंजीनियर यूनियन का कहना है कि ये संशोधन अडानी ग्रुप को बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी डील देने के लिए किया जा रहा है। वहीं एसजेबी का कहना है कि 10 मेगावाट की क्षमता वाले ऊर्जा प्रोजेक्ट को टेंडर के जरिए ही दिया जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर सांसदों ने इसके खिलाफ वोट किया है। दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और मुकेश अंबानी का एक बार फिर से आमना सामना होने जा रहा है। इस बार दोनों के बीच लड़ाई भारत की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग आईपीएल के मीडिया राइट्स को लेकर है। आईपीएल को देश में 60 करोड़ से अधिक लोगों के द्वारा देखा जाता है और इसकी ब्रांड वैल्यू $6 बिलियन है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के मुताबिक 12 जून को होने वाली आईपीएल के मीडिया राइट्स की नीलामी प्रक्रिया में माना जा रहा है कि मुकेश अंबानी की रिलायंस और जेफ बेजोस की अमेजॉन शीर्ष बोलीदाता कंपनियों में से एक हो सकती है। इस नीलामी प्रक्रिया में वॉल्ट डिज्नी भी शामिल होगी, जिसके मीडिया राइट्स इस साल समाप्त हुए हैं। वहीं खबर ये भी है कि जापान का सोनी ग्रुप भी इस नीलामी प्रक्रिया में बड़ी बोली लगा सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।